ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्तारम् नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनम्। यहाँ हम प्रयोजनभूत सात तत्वों की बात देख रहे हैं, क्योंकि जब जब समय दर्शन होता है तो उसमें चार बातें अवश्य होती ही है। आपके पुस्तक में लिखे है, आगे लिखे, परंतु हम थोड़ा आगे का निकाल कर देख लेते हैं। जैन तत्व परिचय पुस्तक है ना आपके पास, हाँ, तो उसमें है अभी पत्रांक 26 में, क्योंकि हिंदी और उसके जो भेद विज्ञान लिखा है उसका सेकंड पेज, पेज नंबर बता देना तो 26 नंबर
नो पत्रांक
सेकंड पेज, सेकंड 166 है। आत्मानुभव करना है तो उसके लिए चार बातें आवश्यक है, मिला? बोल्ड में लिखे चार बातें, हाँ उसको देखेंगे पहले। अपना विषय तो दूसरा चल रहा है, इसको ये चार बातें कौन कौन सी होती है, तो कहते हैं सच्चे देव गुरु और शास्त्र का यथार्थ स्वरूप पहचान कर उनकी दृढ़ श्रद्धा कंडीशन। हाँ हिंदी में है 130, आपके पास हिंदी है 130
167
नहीं, मैं हिंदी क्या बता रहे,
गुजराती नहीं बात कर रहा, 167 थर्ड लाइन फ्रॉम द टॉप,
हिंदी में 130 पृष्ठ
26।
तो देखो क्या है, पहले में पहले पहली कंडीशन क्या है, सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र इनका सही स्वरूप पहचान कर, स्वरूप पहचानने की कंडीशन है। हम तो स्वरूप पहचानते नहीं, बस हमने क्यों, हम उसी कुल में जन्मे हैं तो हम उन्हीं को मानते हैं, हमने जन्म से किसी अन्य को नहीं माना है तो वो सच्ची श्रद्धा नहीं कहलाएगी, क्योंकि दूसरे कुल में जन्मते वो अपने देव को मानते हैं और आपने अपने कुल वाले देव को माना है। बाय चांस आप सच्चे कुल में जन्मे और आपने सच्चे देव को माना तो हमने पहचान कर तो नहीं माना है, ख्याल है ना। जैसे बच्चे खेल रहे हैं वो गोटी क्या कहते हैं, कांच की
मार्बल,
हाँ उसमें एक हीरा है और वो खेल रहा है, क्या समझ कर खेल रहा है,
मार्बल
समझ कर, तो उसको हीरे की कहाँ कीमत है। वैसे सच्चे देव के जो कुछ कुल है उसमें जन्मा, वो जैन में जन्मा, परंतु उसको वीतरागी और सर्वज्ञ क्या है उस स्वरूप पहचान नहीं है। जो अन्य मति अपने देवों को भजता है और ये अपने देव को भजता है, दोनों समान है ऐसा कहा है। तो पहली कंडीशन है सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चा शास्त्र उनको पहचान कर उनकी दृढ़ श्रद्धा कि यही देव का स्वरूप है अन्यथा नहीं है, इसको कहेंगे दृढ़ श्रद्धा। दूसरी बात है, इसका डिटेल विवेचन तो हम बाद देखेंगे, हम चार बातें देखने चाहते, सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति। अभी जो हम सात तत्व देख रहे हैं उनकी यथार्थ है नहीं, जैसी है वैसी। जैसे आश्रव का स्वरूप क्या है, वो दुखरूप भाव है, तो उसको कहेंगे जैसी है वैसी श्रद्धा। ये संवर है वो कैसा है, वितरागता कहाँ है क्या है, ये जैसा बताया है वैसा स्वरूप। मोक्ष तत्व में हम समझते हैं वहां बहुत सुख होगा, कैसा होगा, अरे जैसा स्वर्ग में है ना वैसा ही मगर और ज्यादा। तो हमने कैसा सुख माना, इंद्रिय सुख माना, ये उसकी यथार्थ प्रतीति नहीं है, ये गलत श्रद्धा है उसकी। तो यहाँ यथार्थ श्रद्धा की बात है। स्व पर भेद विज्ञान, मैं स्व कौन हूं और ये पर शरीर आदि अन्य जीव ये सारे पर है, इनको लक्षणों के द्वारा पहचानना, ये स्व पर भेद विज्ञान। और चौथी बात है आत्मानुभूति, जिससे सम्यक दर्शन होता है उनके ये चारों ही होते ही है। उपदेश के लिए हम इसको क्रम कहेंगे, पहले ये करना फिर ये करना फिर ये करना, फिर भी ये चारों एक साथ होते हैं। तो ये तो क्रम से ये विषय आने ही वाला है। हम जहाँ ये सात तत्व क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आत्मानुभूति में ये आवश्यक कंडीशन है कि सात तत्वों का जैसा जिनेन्द्र भगवान ने बताया है वैसा श्रद्धान जरूरी है। तो इसके लिए अभी हम यहाँ सात तत्वों की बात देख रहे हैं। अपना हिंदी में पृष्ठ 103 पर आए हैं। हमने अभी मोक्ष तत्व का स्वरूप नहीं देखा, बाकी तो देखा था, उसकी परिभाषाएं देखी थी। जीव तत्व को हम आध्यात्मिक परिभाषा में कहना है तो जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है वह जीव तत्व हूं मैं स्वयं। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है ऐसे अन्य अनंत जीव, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब अजीव तत्व है। आश्रव तत्व बंध तत्व, उसमें दो दो भेद करना है, एक भाव और एक द्रव्य। तो जीवों की अपेक्षा से बात करनी है तो जीव के जो मोह राग द्वेष परिणाम की उत्पत्ति उसको कहेंगे भावाश्रव, और उसी में अटकना उसको कहेंगे भाव बंध। पुद्गल में देखना है तो कर्मों का आना उसको कहेंगे द्रव्याश्रव, और कर्म आए हुए बंध जाना पुराने कर्मों के साथ या हम जीव के प्रदेशों के साथ कहेंगे तो उसको द्रव्य बंध कहेंगे। संवर में हमने देखा था कि शुद्धि की उत्पत्ति, शुद्धि यानी वितरागता, उसकी उत्पत्ति होना उसको संवर कहा। और यह कर्मों की भाषा में कहना है तो कर्म आ रहे थे उसमें से कुछ प्रकृतियां रुक जाना, बंध रुक जाना, उसको कहेंगे संवर। निर्जरा में हम जीव की अपेक्षा कहेंगे शुद्धि की वृद्धि यानी अशुद्धि की हानि। शुद्धि की वृद्धि यही अशुद्धि की हानि है। और वहां कर्मों की बात देखनी है तो कर्म अधिक मात्रा में, बंधे हुए कर्म अधिक मात्रा में खिर जाना, उसको कहेंगे निर्जरा। इतनी बात तो हमने देखी थी, अभी हम मोक्ष की बात करेंगे। तो मोक्ष तत्व में पूर्ण वितरागता हमने देखे, पूर्ण वितरागता कौन से गुण स्थान में होती है? 11-12। 11-12 वाली जो पूर्ण वितरागता है वो टेम्पररी है, और वो कैसे, कर्मों की सत्ता तो है परंतु उदय में नहीं है, और 12 वाले ने कर्मों का क्षय कर चुका है, यानी वो भी सीधा 13 की ओर बढ़ेगा। 11 ने उपशमित किया है मगर उसका उदय तो आएगा। जैसे हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो कहीं तक तो जाकर फिर एक मोमेंट स्थिर होगा और फिर नियम से वो नीचे आएगा। ऐसे ही वो वितरागता तो हो गई, ऊपर तक गए, फिर क्रम से फिर नीचे नीचे आ गए, आ जाएंगे। तो वहां वितरागता हुई है 11 में भी, परंतु वो 12 जैसी नहीं कहेंगे हम। 12 जैसी है ना कर्मों की, वहां 12 में कोई सत्ता नहीं रहे, और वह जीव नियम से 13 में जाएगा और अरिहंत अवस्था प्राप्त करेगा। तो यहां कहते हैं मोक्ष तत्व पूर्ण वितरागता, पूर्ण शुद्धि का प्रकट होना, यह है भाव मोक्ष। यहां वो केवल ज्ञान उत्पन्न होना ये भी है, परंतु ये तो स्थूल रूप से यहां मोटी तौर से बता दिया। और कर्मों का संपूर्ण अभाव होना, यह है द्रव्य मोक्ष। यहां जब पूर्ण शुद्धि यानी वो योग भी मिट जाएगा, वो सब लेना उसके अंदर। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये आश्रव अर्थात बंध के कारण नष्ट होते हैं। योग भी नष्ट होता है ना, कौन सा हो गया अभी, वो अयोग केवली हो गया है ना। और पूर्वबद्ध कर्मों का संपूर्ण अभाव होता है, ये 14 में तो अभी सद्भाव है वो भी अभाव होगा, उस 14 का भी व्यय होकर सिद्ध दशा प्रकट होगी, तब उसको हम भाव मोक्ष जीव की अवस्था और द्रव्य मोक्ष कर्मों की अवस्था कहेंगे। उक्त विवेचन से अब यह बात, इस बात का ज्ञान हुआ होगा, आश्रव बंध संवर निजर और मोक्ष जीव की एवं कर्म की अवस्थाएं है। ये बात ख्याल में आई, जीव की अवस्थाओं को हमने भाव शब्द लगाया और कर्म की अवस्थाओं को द्रव्य शब्द लगाया, जैसे भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष, और कर्मों में द्रव्य आश्रय, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जार, द्रव्य मोक्ष। शीला बहन आपका प्रश्न था ना, ये भाव और द्रव्य। हाँ, अब यहाँ जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर है उसको थोड़ा देखना है इसको, क्योंकि हम द्रव्यों के नाम में भी जीव द्रव्य कहते हैं और तत्वों के नाम में भी जीव तत्व कहते हैं। इस विश्व में जीव द्रव्य कितने हैं, हमने संख्या देखी थी पहले, याद है आपको? पूर्वी जीव द्रव्य कितने, द्रव्य की बात करें, जैसे जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य हम देखते हैं ना, तो जीव कितने हैं?
जीव तो एक।
हाँ, जीवों की संख्या कितने हैं? अनंत है, हम देखते ना, एक निगोल शरीर में भी अनंत है, बाकी तो हो गए सब कितने, मनुष्य है, तिर्यंच है, देव है, नारकी है, सब कितने हैं, सिद्धों को भी लेना है तो अनंत है। तो ये जो जीव द्रव्य जब हम कहते हैं तो द्रव्य किसे कहते हैं, हमने परिभाषा सीखी है, याद है आपको? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ये तो हमने बिल्कुल प्राथमिक यही परिभाषा सीखी। और थोड़ी ज्यादा सीखने के बाद तत्वार सूत्र में हमें पता चला गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुणों और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं, क्योंकि गुणों का समूह तो है ही द्रव्य, परंतु द्रव्य अनादि अनंत फैला हुआ है ऐसा हम कहेंगे तो अपने पर्यायों में व्याप्त है। जैसे सोना है हमारे घर में, कब से है हम कहेंगे, गए 400 साल से हमारे घर में वो चला आया है, तो वो किसी न किसी फॉर्म में विद्यमान है ना, कभी उस सोने की बंगड़ी बनी, वो हर पीढ़ी ने कुछ न कुछ उसमें डिजाइन बदल दिया, पर सोना तो वही का वही है, तो हम वो सभी पर्यायों में विद्यमान कहेंगे उस सोने को। जैसे हमें कोई चरित्र लिखना है महात्मा गांधी का, कब से लिखेंगे, जब से उनका जन्म हुआ और फिर वो मरण हुआ तब तक कहेंगे हम। ऐसे ही द्रव्य, द्रव्य को हमको कहना है, द्रव्य कब से और कहां कब तक रहेगा, अनादि से अनंत काल तक, किस फॉर्म में विद्यमान होगा, अपने अपने पर्यायों में। तो अनादि अनंत पर्यायों का जो समूह है ना उसको द्रव्य कहेंगे हम। जैसे गांधी जी को कहेंगे वो जन्मे, फिर वो बालक हुए, फिर हम उनके कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट घटनाएं भी बताते हैं। ऐसे यहाँ द्रव्य किस फॉर्म में विद्यमान है, तो अनादि अनंत पर्यायों, तो द्रव्य क्या है, तो हम कहेंगे गुणों और पर्यायों का समूह है। ये बात क्यों कहना चाहते हैं, हमको तत्व और द्रव्य में डिफरेंस देखना है। तो जीव द्रव्य कहेंगे तो वो अनंत है, और क्या है तो गुणों का समूह है, गुण तो सब में वही के वही रहते हैं। पर्यायों का समूह कहते हैं तो हर एक का अपना पर्याय क्रम अलग अलग है, नहीं समझे, कोई अनादि से अभी तक नित्य निगोद में ही पड़ा हुआ है, कोई जीव अनंत काल पहले निगोद में से निकला था फिर चारों गति में घूम रहा है अभी तक, ऐसा भी कोई होगा, कोई जीव निगोद में से निकला कब का, फिर कुछ पर्याय धारण किए और फिर मोक्ष में भी चला गया, अब वो मोक्ष में ही अनंत काल तक रहेगा। हरेक का पर्याय का अपना अपना क्रम अलग अलग होगा, जैसे हमारे अपने अपने फिंगर प्रिंट्स अलग है ना, हमको यहाँ एंट्री नहीं देते, वो फिंगर प्रिंट दिखाओ आपके, तो हरेक के अपना अपना कुछ अलग है। यहां तो कहते हैं कि हरेक का अपना अपना पर्यायों का क्रम अलग अलग है, गुण सबके समान है, हरेक में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य सब कुछ है, परंतु हरेक की जो पर्याय है सुनिश्चित, वो उस द्रव्य के क्रम में निश्चित है। बेन ख्याल में आता है, देखो श्रेणिक राजा पहले मिथ्या दृष्टि था, तीव्र गृहित मिथ्या दृष्टि, उस समय उसकी रानी सम्यक दृष्टि, चेलना रानी, ये तो हमें मालूम है कथा। उसने फिर वो मुनि पर उपसर्ग किया, सातवें नरक का बंद किया, बाद में सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया, महावीर भगवान के सानिध्य में क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ, और ये वहां से आकर 84,000 वर्षों में पहला तीर्थंकर होने वाला है। उसके पहले चेलना रानी सम्यक दृष्टि उसके पहले से थी, अब वो स्त्री पर्याय में अभी चेलना रानी सम्यक दृष्टि ने भी यहां से स्वर्ग में है अभी वर्तमान में, तो वहां तो मिनिमम आयु तो दो सागर की, वो पहले स्वर्ग में जो है वहां की मैक्सिमम आयु दो सागर की है, तो वहां कुछ ना कुछ सागरों की आयु अभी भोगेगी। सागर कितना बड़ा काल है, सागर के असंख्यात विभाग में असंख्यात करोड़ वर्ष चले जाएंगे, तो इतने काल तक वो वहां सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में बना रहेंगे। अभी पुरुष पर्याय में जीव होगा वो, और यहाँ श्रेणी के राजा तो मोक्ष चले जाएंगे। ख्याल में आता है ना दोनों का डिफरेंस, हरेक का अपना अपना पर्याय का क्रम अलग अलग है, ये बात बताना चाहते। अब कृष्ण जो थे उसके पुत्र भी मोक्ष चले गए, उसके भाई कितने मोक्ष चले गए, अब ये जीव तो नरक में गए और वहां से आकर फिर वो कुछ तीर्थंकर हो। ये हरेक का अपना अपना अनादि से अनंत काल का पर्याय उस द्रव्य में ही विद्यमान है, उसको हम कहेंगे द्रव्य। तत्व किसे कहना है, यह डिफरेंस है। तत्व यानी जो कायमी जो पार्ट है, अभी पर्यायों की तरफ देखते तो वेरिएशन है, तत्व में अगर देखना है तो सबका जीव पना जो है वो समान है, सिद्धों का हो या अपना हो। अब हम जनरल बात करें तो तत्व जब कहेंगे, जीव तत्व यानी जीव का जीवपना किसमें है, तो उसके ज्ञान दर्शन चारित्र सुख आदि जो अनंत गुणों का समूह है वहां उसमें अनंत पर ध्यान नहीं देना, उसका अखंड एकपना। द्रव्यपना किसमें है, जीवपना किसमें है, तो ज्ञान दर्शन सुख आनंद वगैरह जो है उसके गुण हो गए, जो कायम टिकने वाला नित्य अंश जो है वो उसका जीव तत्व है। फिर हमने अन्य जीवन से दृष्टि हटाने के लिए कह दिया जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है। पहले जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर है, तो द्रव्य ने सारे पर्याय भी उसमें आ गए, गुण पर्यायों का समुदाय, और तत्व में उसका जीवपना, यही अब बात हम यहां पढ़ेंगे। हम देखो जीव द्रव्य की बात आती है तो हम पर्यायों सहित अखंड द्रव्य का विचार करते हैं, परंतु जब तत्वों की बात आती है तब पर्यायों को स्वतंत्र स्थान देकर, क्योंकि यहां आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष को स्वतंत्र पर्याय बताई है और जीव तत्व और अजीव तत्व को अलग निकाला है। ख्याल में है ना, यहां पर्यायों को गौण करके जो तत्व आता है उसकी बात की है, तो स्वतंत्र स्थान देकर उनके स्वरूप का अलग कथन किया जाता है। स्व तत्व ने जीव तत्व को एक बाजू में रखते ही विश्व की समस्त बातें पर तत्व में यानी अजीवादि तत्व में आती। हमने देखा स्व पर भेद विज्ञान करना है, तो स्व में किस किस को रखना, आप कहेंगे अपने बच्चों को तो रखे, अरे अपने पति को तो रखे, हमारे भगवान तो रखने चाहिए क्योंकि उनके प्रति हमें बहुत, तो हमें स्व और पर को डिवाइड करना है। तो हमारा मोह है ना, तो स्व में किस किस को रखना चाहते हुए, कुछ नहीं, ये शरीर को भी नहीं रखना है और ना ही अपने भगवान को, अपने बाल बच्चों को, किसी ने स्व में ओनली स्व और पर में ये सब, ख्याल है? तो बाकी सबको क्या कहेंगे हम, अजीव तत्व। देखो यहां एक दृष्टांत देके समझाया है, तुम्हें राजा हरिश्चंद्र की कहानी मालूम ही है, आपको मालूम है कि पूर्वी नहीं, हरिश्चंद्र की कथा सुनिए। हाँ, ये हरिश्चंद्र राजा था और उसकी रानी वो तारामती थी ना। हाँ, तो उसमें ऐसे बहुत सारे संकट आते हैं आदि आदि, बहुत लंबी कहानी है। तो वो कहानी ऐसी है दुखभरी की, उसको फिर वो चांडाल का काम करना पड़ता है, उसके पुत्र को भी मारने का, ऐसा कुछ सारा उस पर इतना प्रसंग आता है कि वो नाटक देखने वाले या पढ़ने वाले तो रोना ही चालू करते हैं। तो कहते तुम्हें राजा हरिश्चंद्र की कहानी मालूम ही है, एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक चल रहा था। हरिश्चंद्र पर आई हुई आपत्तियों को देखकर, संकट उसके जितने थे, सारे प्रेक्षक अश्रु की धारा में डूब गए। उस समय एक स्त्री बड़ी शांति से नाटक के दृश्य देख रही थी, तो बिल्कुल ऐसे कोई उसके चेहरों पर कुछ परिवर्तन नहीं था। उसके बाजू वाली स्त्री से रहा नहीं गया, रोते रोते ही उसने उस स्त्री से पूछा, कैसी दुष्ट हो तुम। बाकी तो नाटक देखते थे, रो रहे थे और एक नहीं रो रही थी, तो दूसरी कहती तुम बहुत दुष्ट हो, इसका दुख देखकर तुमके दया नहीं आती है, तुझे कुछ भी दुख कैसे नहीं हो रहा। तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, अरे पगली वह तो मेरा पति है। हरिश्चंद्र का कितना भी अच्छा स्वांग धारण करे, भूमिका के साथ कितना भी तन्मय यानी समरस दिखाई दे, फिर भी वह जो है वही है ना? उसके रूप में स्वभाव में रंच मात्र अंतर पड़ने वाला नहीं है। वैसे ही हमारे पर्यायों के जो कोई स्वांग हो, हम जो जीव है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वो भले मनुष्य पर्याय में आ जाए, देव में चला जाए, कभी नारकी हो जाए, कभी निगोद में चला जाए, फिर वो जीव तो जीव ही है। और हम कहां देख के रोते हंसते हैं? पर्याय की तरफ, क्या ना? उसी प्रकार ये सातों तत्व भिन्न भिन्न हैं, जीव की ही अवस्थाएं होने पर भी इनसे जीव तत्व ने स्व तत्व भिन्न तत्व है। यह जीव शरीर के संयोग में रहते हुए भी शरीर से ने अजीव तत्व से भिन्न है। देखो अभी अलग अलग तत्वों की बात कर रहे हैं, शरीर और जीव अभी इकट्ठा एक साथ रहते हैं, फिर भी शरीर से भिन्न है। अब कहते हैं क्रोधादि रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी जीव तत्व भिन्न है, क्योंकि हमने जीव तत्व अलग बताया, आश्रव तत्व भिन्न बताया। सभी तत्वों में हमें भेद ज्ञान करना है ना, एक स्व तत्व को छोड़कर, जीव तत्व जो मैं हूं इसको छोड़कर बाकी सभी तत्वों को अलग अपने से भिन्न पहचानना है। आश्रव यानी क्रोध मान माया लोभ के परिणाम अभी वर्तमान में पर्याय में है, तो हम सारी कोशिश क्या करते हैं, इसको कम कैसा करना। पहले कम करने की बात नहीं है, पहले इसको भिन्न पहचानने की बात है। हमने इसको अपने में रखा है, किसको? क्रोधादि को भी। अब ये भिन्न है ऐसा जानना है। कैसे जानेंगे? क्योंकि मैं तो ज्ञान मैं हूं, जानना मेरा कार्य है, और क्रोध तो विकारी भाव है, वो तो कायम टिकने वाला भाव नहीं है। जानन 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 तो सिद्ध अवस्था में भी रहने वाली है, और ये जो क्रोध मान माया लोभ ये तो पलटते रहते भाव है, वो कुछ जानते नहीं है। इसको जानने वाला कार्य भी मेरा है। क्रोध को जानता है, क्रोध स्वयं को जानता है कि ज्ञान क्रोध को जानता है? है ना? तो वो ना स्वयं को जानता है ना पर को जानता है, और वो दुखमय भाव है, और मैं स्वयं ज्ञान हूं तो वो आनंदमय भाव है। तो इस तरह से उसमें भिन्नता जानना, इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। ये बात जो है ना ये छूट जाती है, और हम कुछ ना कुछ राग को घटाने की कोशिश में लग जाते हैं। जो हम उसको अपना नहीं मानेंगे तो अपने आप चला जाने वाला है। जिसको हम अपना माना है वो अपने को छोड़कर नहीं जाएगा फिर। ये इतनी सिंपल बात है। देखो हम क्या कहते हैं कि क्रोधादि रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने, प्रत्यक्ष ने भी है वर्तमान में, पर्याय में क्रोध चल रहा है, उस काल में भी वो जीव तत्व भिन्न है और रागादि भिन्न तत्व है। रागादि में राग द्वेष मोह सब ले लेना। अब इसको हम कपड़े के उदाहरण पर देखेंगे। जैसे हम मलिन कपड़ा देखते हैं, अवस्था में मलिन है तो पहले में पहले ज्ञान किया जाता है ये मलिन है। फिर भी मलिन अवस्था में कपड़ा भिन्न और मैल भिन्न, ऐसा ज्ञान है कि नहीं? ऐसे श्रद्धा भी है कि नहीं? यदि नहीं होते तो हम ये सारा धोने का प्रोसेस क्यों करते हैं? मैल भिन्न है और भिन्न किया जा सकता है, और वो कपड़े का स्वरूप नहीं है, ये हमारे ख्याल में भी है, हमारे ज्ञान में भी है, श्रद्धा में भी है। तब उस पर वैसे हम उसको भिन्न करने की कोशिश करते हैं। तो हम मलिन कपड़ा देखते हैं, उस मलिन अवस्था में भी, अवस्था में कपड़ा मलिन है, संयोग है ना वहां मैल का, कपड़ा भिन्न है और मैल भिन्न है, दोनों का अस्तित्व भिन्न है। कपड़ा दिख रहा है मलिन, फिर भी कपड़ा मल रूप नहीं हुआ है, क्योंकि उसको भिन्न किया जा सकता है। दोनों का अस्तित्व भिन्न है, दोनों का लक्षण भिन्न है, स्वरूप भिन्न है, और इसीलिए वे भिन्न हो सकते हैं। टीवी पर साबुन की एडवर्टाइजमेंट में भी यही तो बताते हैं, अंतर क्या है? उनकी दृष्टि द्रव्य पर है, धन पर है, और हमें द्रव्य दृष्टि करना है। द्रव्य दृष्टि यानी अपना जो द्रव्यांश है, कायम रहने वाला स्वभाव, उसकी दृष्टि करना है ना, उसमें स्वपना स्थापित करना। यानी यहां भी ऐसे लेना, पर्याय में, अपने पर्याय में राग द्वेष मिथ्यात्व होते हुए पहले वो नष्ट नहीं हुई ना, जब मिथ्या दृष्टि ही अभ्यास करेगा और सम्यक दृष्टि हो जाएगा, तत्वों का विचार करेगा और सम्यक दृष्टि होगा। तो जब वो तत्वों का विचार कर रहा है, सीख रहा है, तो उसके पर्याय में मिथ्या तो है कि नहीं है भाई? मिथ्या तो भी है, राग द्वेष भी है, उसको क्या करना है? वो अपने से भिन्न है, इतने पहले उसको स्वीकार करना है, स्वीकार करना है, कुछ नहीं करना है, पहचान है कि ये मिथ्या तो है, ये राग द्वेष है और ये मेरे से भिन्न है। तो ऐसे जो है कि मिथ्यात्व राग द्वेषों से युक्त मलिन अवस्था में भी जीव तत्व भिन्न है, त्रिकाल शुद्ध चैतन्यमय एक रूप है। ये भिन्न है का अर्थ क्या है? जीव तत्व कैसा है? त्रिकाल कायम रहने वाला है, एक रूप है, क्योंकि ये जो विविधता होती है वो पर्याय में होती है, कभी शुभ परिणाम, कभी अशुभ परिणाम, कभी राग, कभी द्वेष, ये कहां हो रहा है? पर्याय में। और जीव तो जीव, ज्ञान दर्शन वो चल रहा है उसका, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और मोह राग द्वेष रूप जो है वो भिन्न है। देखो, कपड़ा मैला होने पर भी, कपड़ा तो स्वच्छ ही है, क्या है? मैला होते हुए भी स्वच्छ है, ऐसी पूर्ण श्रद्धा होगी तो ही मैल दूर करने का उपाय हो सकता है। ख्याल में आता है? ज्ञान में तो वहां मैला है ऐसा कहेंगे, पर श्रद्धा में कपड़ा तो भिन्न है, क्योंकि कपड़ा तो कपड़ा है और मैल तो मैल है, दोनों भिन्न है, ऐसी श्रद्धा होगी तो ही आगे का प्रोसेस होगा। उसी प्रकार मिथ्यात और कषाय तो है पर्याय में, तो उसमें भी जीव तो कैसा है? पूर्ण शुद्ध है। कैसा शुद्ध? सिद्धों जैसा। ये श्रद्धा में लेंगे तो फिर वो जो कुछ मिथ्यात्व राग द्वेष वो अपने आप चला जाएगा। यहां तो कोई साबुन चाहिए, पानी चाहिए, वहां उस कुछ नहीं चाहिए। पहले में पहले वो भिन्न है इसकी श्रद्धा, और फिर जो कायम रहने वाला स्वभाव है उसमें एकाग्र होना, बस इतने से वो मिथ्यात्व राग द्वेष निकल जाने वाला है। देखो, उसी प्रकार मिथ्यात्व कषायन सहित जीव में भी, जीव तो सदा पूर्ण शुद्ध, सदा लिखा है, हमेशा पूर्ण शुद्ध, निर्मल, निर्मल यानी मल रहित, ध्रुव यानी कायम रखने वाला, रहने वाला चैतन्यमय ही है। ऐसी पूर्ण श्रद्धा हुए बिना, श्रद्धा नहीं हो तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। मिथ्यात्व रूपी मैल दूर करने का उपाय नहीं हो सकता, तो श्रद्धा में लेना है कि मैं जीव तत्व हूं, मैं राग से भिन्न हूं और मैं हमेशा सदैव परिपूर्ण हूं और शुद्ध हूं। पर्याय में नहीं हो, यदि हम कहेंगे कपड़ा पर्याय में भी शुद्ध ही है, स्वच्छ ही है, तो स्वच्छ है तो अभी क्या काहे का उपाय क्या करेंगे हम? स्वच्छ ही है ना, तो रहने तो पहने रखो। पर्याय में मैला है ऐसा ज्ञान तो होगा, उसी समय श्रद्धा कैसा है? श्रद्धा कैसी है? कपड़ा तो शुद्ध ही है, दोनों बातें होनी चाहिए। ऐसे ही अभी पर्याय में मिथ्यात्व राग द्वेष है। कोई जीव ऐसे भी होते हैं, अरे आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध होता है, ऐसा ऐसे, अरे त्रिकाल शुद्ध है तो वो कुछ प्रयत्न ही नहीं करेगा शुद्ध होने का। ये शुद्ध है कैसे लेना है? श्रद्धा में लेना है। पर्याय में अभी अशुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता, मैल, राग द्वेष, मिथ्या तो होते हुए भी स्वरूप की अपेक्षा शुद्ध हूं, तो कोई अन्य मति भी कहते हैं आत्मा तो क्या अग्नि से जलता नहीं है, वो कभी उसको मरण नहीं होता है, वो तो हमेशा त्रिकाल शुद्ध 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 है। जो हम द्रव्य की अपेक्षा कहते वो सर्वथा मान लेते, पर्याय की अशुद्धता को स्वीकार ही नहीं करते। देखिए तो बाकी सब तो माया है और मैं तो शुद्ध बुद्ध हूं, समझ में ना जैनियों में उनमें क्या क्या अंतर है। तो यहां कहते हैं देखो, अब जरा ध्यान से देखना, फिर दोबारा समझाए। जीव की अवस्था मलिन है ऐसा ज्ञान होगा, यदि अवस्था में मलिनता का स्वीकार नहीं होगा तो मलिनता दूर करने का उपाय नहीं हो सकता। दूसरी बात, श्रद्धा में मैं स्वयं या अब यहां शुद्ध हूं ऐसा नहीं लेंगे तो वो उसका कायमी स्वरूप है, उसको दूर ही नहीं करेगा। जैसे रोग हुआ है, तो रोग हुआ है पहले इसका ज्ञान कि ये रोग है, ये जब पता चलेगा। और फिर श्रद्धा क्या है, अरे मेरी तो अवस्था निरोगी हो सकती है ना, इससे तो मैं भिन्न हूं, दिस इज नॉट नॉर्मल। आप तो डॉक्टर, कोई तो ऐसे कि रोग को रोग ही नहीं समझते तो उपाय नहीं करेंगे, और वो रोग का अपना अंग ही समझ लेंगे तो भी उपाय नहीं करेंगे। तो उससे भिन्न हो सकता हूं ये श्रद्धा होगी तो ही आगे के उपाय सोचेगा। ऐसे यहां देखिए, जीव की अवस्था मलिन है ऐसा ज्ञान होगा, यानी पहले उसको स्वीकार है कि अवस्था में मलिनता है। दूसरी बात, उसी समय श्रद्धा में जीव का स्वरूप तो शुद्ध है ऐसी श्रद्धा होगी, ज्ञान और श्रद्धा दोनों को लिए, तो ही मलिन अवस्था नष्ट करने का प्रयत्न हो सकता है। अगर मलिन अवस्था का ज्ञान ही नहीं होगा तो मलिन अवस्था को टालने का उपाय ही क्यों करें, क्योंकि हम मलिन है ऐसा स्वीकार ही नहीं। दूसरी बात, मलिनता को ही अपना स्वरूप है ऐसी श्रद्धा करेगा तो भी मलिनता हटाने का उपाय नहीं करेगा। हम कहे हम तो हिंदी ना, कोई कहते तुम परमात्मा हो ये पहला नक्की करो, अरे हम काय का परमात्मा, हम तो हिंदीन है, श्रद्धा में लेना था ना। आपने सुना होगा स्वामी जी को, तो कहते तू परमात्मा छो एम पहला नक्की कर, फिर कहे तू परमात्मा छो अने पर्याय मा परमात्मा थाओ। अरे एक बार छो कहते और एक बार थाओ कहते, ये कैसी बात। तो स्वभाव अपेक्षा हम परमात्मा है और उसका लक्ष्य करेंगे तो हम पर्याय में परमात्मा बनेंगे। दो बातें हुई ना, एक स्वभाव अपेक्षा और एक पर्याय अपेक्षा, तो दोनों ही आवश्यक है। पर्याय का ज्ञान भी जरूरी है और स्वभाव की श्रद्धा भी जरूरी है। ये ज्ञान श्रद्धा में अंतर समझ में, प्रतीति जिसको कहते हैं हम, कैसी प्रतीति। अभी कोई एक्टर है और वो भूमिका कर रहा है किसी चोर की हो या कूली की हो या कोई भिखारी की हो, तो उसके जो विचारों में उसके एक्शन में सब क्या है, जो भिखारी जैसा बिहेव कर रहा है, उस समय प्रतीति क्या है उसको भूल गया कि अपना नाम वगैरह सब उसको रटना पड़ता है, मैं अमिताभ हूं ऐसा रटना पड़ेगा उसको। वो तो सारा उसका बिहेवियर उस जैसा, वो पार्ट जैसा चल रहा है जो कोई पार्ट प्ले कर रहा है, फिर भी मैं कौन हूं उसके बारे में वो कुछ भूला नहीं, उसको रटना नहीं पड़ता, या एक बार तो याद करूं मैं कौन हूं, ये कुछ नहीं है। इसको कहते प्रतीति। प्रतीति तो बनी रहती है, उसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें कैसी प्रतीति है, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, या मैं मां हूं, या कोई मैं उज्ज्वला हूं, जो कोई बात है, तो उसके लिए कुछ रटना पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो यहां लिखा है ऐसे शास्त्र में, जब तक ऐसी प्रतीति अपने आत्मा में न हो जाए तब तक उस पर ऐसा ही तत्व विचार करना। जैसी प्रतीति अभी प्राप्त शरीर में है उसके लिए सिखाने की जरूरत नहीं है, वो सहज प्रतीति बनी रहती है। आप कुछ भी काम करते रहो फिर भी ये प्रतीति बनी रहती है। ऐसी प्रतीति जब तक आत्मा में नहीं होती, हो जाए तो हम कहेंगे ये सम्यक दर्शन हो गया, तब तक ये भेद विज्ञान करते रहो ऐसा कहा। तो ये भेद विज्ञान से ऐसे आत्मा का अनुभव होगा, उसी से ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होंगे और उसी से केवल ज्ञान होगा। कहते इतना सरल उपाय है जो अपने हाथ में है। देखो, अवस्था सहित यानी पर्याय सहित द्रव्य में पर्याय रहित जो अंश है, क्या कहते हैं, पर्याय सहित द्रव्य में पर्याय रहित अंश। सोने का उदाहरण अपना लेते हैं, सोना तो पर्याय से रहित नहीं होगा कभी, किसी न किसी फॉर्म में तो होगा ही, बंगड़ी हो, हार हो या कुछ भी, और उसमें पर्याय रहित अंश का अर्थ क्या है, सोना। सोना कुछ न कुछ पर्यायों में विद्यमान है, अवस्थाओं में कोई न कोई डिजाइन है उसकी, तो हम क्या हम सोने को अकेले को कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते ना। हमारे पास कितना सोना है, तब हम हार है कि बंगड़ी वो विचार नहीं करते, कितना सोना है उसका विचार करते, यानी ये हमारे शुद्ध ज्ञान में कैपेसिटी है मुख्य गौण करने की। यदि हम बंगड़ी को या हार को डिजाइन को मुख्य करना है तो हम सोना का गौन करके हम डिजाइनों का कितनी बंगड़ी है कितने हार है ऐसा हम कहेंगे, तो हमने उस पर्याय को मुख्य किया। कितना सोना है तो क्या कहे हमने,
तोला।
वो तो हमने द्रव्य को मुख्य किया, कितना तोला है कहो, ये मुख्य गौण कर सकते हैं ना। ये दृष्टि का कमाल है, यानी किस अंदाज से किस व्यू से हम देखते हैं, ये हमारे में ये यानी ज्ञान में ये कैपेसिटी है। अपने को भी वैसा ही लेना देखना है, पर्याय भी है, आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष ये सारी पर्याय है, और मैं भी हूं बाकी अन्य द्रव्य भी है सब कुछ है। अब इसमें कैसा देखना है, पहले में पहले पर्याय है उसका स्वीकार करेंगे, और फिर श्रद्धा किसकी करनी है, मैं कौन हूं। तो जो कायम रहने वाला जो ध्रुव है उसमें मैं हूं ऐसी श्रद्धा करनी है। श्रद्धा करने के अर्थ ये हमको ख्याल में लेना है कि कायम ही रहने वाला अंश वह मैं हूं, वर्तमान में जो राग द्वेष वगैरह हो रहे वो है, उस रूप मैं नहीं हूं, क्योंकि वो तो मिटने वाले हैं, एक एक समय वाली पर्याय है, वो तो नाश होने वाली है। कायम जो है वो हमेशा टिकने वाला है। हमने पर्याय में मैं हूं ऐसा मान लिया तो पर्याय का नाश हुआ तो हम क्या मानेंगे, मेरा नाश हुआ। देखो हम बात करते हैं, हमने माना मैं मनुष्य हूं, अब मनुष्यपना का नाश होकर हम मान लेते देव होगा, कोई तीर इंच होगा, हम देव को मानेंगे ना। किसी को दुख नहीं लगना चाहिए, सबको देव में जाना है ना। तो मैं मनुष्य हूं ऐसा मान लिया, अब ये मनुष्य पर्याय का नाश होने का समय आया तो क्या मानता है, हाय मैं मर गया, मेरा नाश हो गया। दुख क्यों हो रहा है, पर्याय जितना अपने को माना इसलिए। सुखी कब होगा, अरे मैं तो अनादि अनंत हूं, ये मनुष्य पर्याय है, वो पर्याय की बात है। मैं तो जीव हूं, अभी भी जीव हूं, बाद में भी जीव रहूंगा, और सिद्ध भगवान हो जाऊं तो भी जीव ही रहूंगा, तो मेरा तो कोई नाश होने का सवाल ही नहीं है। तो पर्याय जितना अपने को नहीं मानेंगे तो हम तो अनादि अनंत कायम रहने वाले हैं ना, सुखी होने का यही उपाय है ना, तो उसमें तो कोई दुख की बात ही नहीं है। पर्याय तो ऐसे भी नष्ट होने ही वाली है, क्योंकि पर्याय होती है अध्रुव, वो तो एक पर्याय चेंज होकर दूसरी पर्याय होने ही वाली है। तो मैं हूं जीव हूं कायम रहने वाला हूं, तो इसको कहेंगे ये मैं जीव तत्व। तत्व का अर्थ समझ में है, पर्याय के होते हुए भी पर्याय अंश को गौण करके ध्रुव कायम रहने वाले अंश को हम यहां द्रव्य अंश कहेंगे। देखो द्रव्य कैसा है, नित्यानित्य स्वरूप है, कायम रहते हुए कायम बदलता है। द्रव्य द्रव्य रूप से कायम रहता है और द्रव्य ही पर्याय रूप से बदलता है। सोने की बंगड़ी जो हम देखी है, सोने की बंगड़ी ये हम इकट्ठा देखे, अब उसमें ये सोना अंश और एक पर्याय अंश है, तो सोना सोना रूप से कायम रहता है और सोना बंगड़ी रूप से अध्रुव है, हार रूप से अध्रुव है। अकेले बंगड़ी अध्रुव ऐसा नहीं कहेंगे, बंगड़ी बदलती है ऐसा नहीं कहेंगे, सोना बंगड़ी रूप से था वो सोना ही हार रूप से हुआ। इसमें दो अंश हो गए, एक ध्रुव अंश और एक पर्याय अंश, तो इसके फिर हम वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उसके समझाते हैं। तो ये जो ध्रुव अंश है वो द्रव्य अंश है, इसको हम कैसा समझाएंगे, ये सामान्य है और ये विशेष है। विशेष यानी उसकी विशेषता है ना, पर्याय है, बंगड़ी है, हार है, ये विशेष है, और सोना 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 ये सामान्य है, ये द्रव्य की अपेक्षा हुआ। क्षेत्र की अपेक्षा अगर हम कहते हैं तो वो तो अभेद है, और इसमें हम पर्यायों में कहेंगे या गुणों में कहेंगे तो भेद है, या हम जीव में घटाना है तो ये असंख्यात प्रदेश ही हमने भेद करके कथन किया। जैसे हॉल कितना है तो उस दिन बाकी ना 2000 स्क्वायर फुट है, तो क्या 2000 स्क्वायर फुट 2000 टुकड़े है क्या उसमें, नहीं, हॉल तो एक अखंड है। ऐसे आत्मा एक अखंड है, अभेद है, तो एक क्षेत्र की अपेक्षा अभेद को लक्ष्य में लेना, उसको हम कहेंगे वो ध्रुव अंश, और फिर उसके जो पर्याय अंश यानी उसके भेद कर करके कथन करेंगे वो हो गया पर्याय अंश क्षेत्र हो ना। फिर काल की अपेक्षा अनादि अनंत एक अखंड प्रवाह रूप से है तो उसको कहेंगे वो काल की अपेक्षा वो और नित्य कहेंगे उसको, और पर्याय की अपेक्षा अनित्य कहेंगे। ऐसे ही द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, भाव की अपेक्षा ये एक कहेंगे, द्रव्य एक है और भाव की अपेक्षा अगर हम उसको विशेष कहना है पर्याय की अपेक्षा तो अनेक है, गुणों के भेद है या पर्यायों के भेद है वो अनेक हो गया। इसलिए जब हम द्रव्य की अपेक्षा बात करते हैं तो उसमें कैसा कहते हैं सामान्य अभेद नित्य और एक, इसी को दूसरा नाम लेते हैं त्रिकाली है, त्रिकाल अभेद कुछ भी कहो, बात तो यही बतानी है कि जो कायम रहने वाला जो द्रव्य अंश है उसको द्रव्य अंश कहते हैं और जो बदलने वाला है उसको पर्याय अंश कहेंगे। पर्याय का अर्थ भेद भी होता है, किसी भी अपेक्षा भेद करेंगे तो उसको हम पर्याय अंश कहेंगे और जो कायम रहने वाला है उसको हम द्रव्य अंश कहेंगे।
जो कायम रहने वाला है उसको द्रव्य अंश कहेंगे।
हाँ, द्रव्यांश यानी वो नित्य नित्य अंश, क्योंकि द्रव्य में ही दो भेद है। भेद किस तरह से समझने के लिए, दो टुकड़े नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ सामान्य और यहाँ विशेष, ऐसी बात नहीं है। जहाँ सोना है वही उसके पर्याय है, जहाँ द्रव्य है वही उसकी पर्याय चल रही है।
अंश माने तो उसका कुछ बड़े बड़ी वस्तु का छोटा भाग ऐसे अंश होता है।
हाँ, अंश है परंतु उसका क्षेत्र अलग अलग नहीं है। जो अंश द्रव्य का है, जहाँ जितना द्रव्य बड़ा है, अब हम कहेंगे द्रव्य है जीव द्रव्य और मति ज्ञान क्या है उसकी एक पर्याय, पर्याय को हम अंश कहेंगे। तो मति ज्ञान कितने क्षेत्र में, इतना बड़ा ये जीव द्रव्य, मति ज्ञान कितना बड़ा होगा
पूरे
में। अब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान था, पलट कर केवल ज्ञान हुआ, वो कितना बड़ा होगा, वो भी इतना ही है। तो उसका मति ज्ञान अंश पलट कर केवल ज्ञान अंश हुआ, जीव का ज्ञान तो ज्ञान ही रहा, वो नित्य अंश कहेंगे। और ज्ञान की जो पर्याय है उसको पर्याय अंश कहेंगे। अंश यानी उसका क्षेत्र की अपेक्षा छोटा भाग, ऐसा नहीं लेना। अंश यानी उसके तो भेद कोई ऐसा उसकी अपेक्षा,
क्षेत्र काल भाव को द्रव्य अंश और पर्याय अंश की अपेक्षा से समझाया।
आपके पुस्तक में ये जो वहां फिगर होगी ना, देखो 106 पेज पर हिंदी में है
आपके, होगा हाँ एक पेज पलटा है तो आएगा।
देखो ये टेबल कैसे है, पहले अपेक्षा लिखी है, वर्टिकल कॉलम में द्रव्य क्षेत्र काल भाव लिखा है। वस्तु कैसी होती है, कौन सी, तो सामान्य विशेषात्मक होती है। सोने की बंगड़ी वस्तु क्या है, सोने की बंगड़ी। अब उसमें द्रव्यांश क्या है सोना और पर्यांश क्या है बंगड़ी, तो उसको सामान्य और विशेष। क्षेत्र की अपेक्षा भेदा भेदात्मक, द्रव्यांश है अभेद और पर्यायांश है भेद। काल की अपेक्षा नित्यानित्यात्मक, तो द्रव्यांश है नित्य और पर्यायांश है अनित्य। वैसे भाव की अपेक्षा, भाव यानी उसके गुणों का समूह, एक और अनेकात्मक, द्रव्यांश है एक और पर्यायांश है अनेक। तो ये द्रव्य अंश तो कायम वही का वही कायम रहता है और पर्याय अंशों में चेंजेस होते हैं, उसमें भेद होते हैं। इसकी बात और कल लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, कल नहीं आगे के नेक्स्ट लेक्चर में, अब यहीं रुकते हम। 2400 भगवान की जय। Thank you.